श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 और आज श्लोक संख्या है 4। चौथी श्लोक इस तरह से आए, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुन्तिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। इसका शब्दार्थ इस तरह से है, भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायु वायु, खम आकाश, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, एवा निश्चय ही च तथा अहंकार अहंकार इति इस प्रकार, इयाम ये सब, मैं मेरी, भिन्ना पृथक, प्रकृति शक्तियां, अष्टधा 8 प्रकार की। अनुवाद इस तरह से है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। भिन्ना मतलब अपरा। तात्पर्य आप लोग सुनिए ध्यान से, श्री रघुवाद की ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि 7 तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रिनी रूपाणि पुरुषा आख्यान्यथो विदु, एकम तु महता सृष्ट्र, द्वितीयम त्वतन स्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। इसका अनुवाद है, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का सुमांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण, नियंता तथा भोक्ता। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति का चरम ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इसमें से प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें पांच इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही दस तत्व हैं, किंतु अन्य तीन तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की दस इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है, अतः भगवान की आठ विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
तो आप जानते हैं कि ये जो सातवां अध्याय है, इससे भक्ति योग शुरू होता है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, आखिरी के 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग के लिए हैं, और ये जो बीच के 6 अध्याय हैं भक्ति योग है। तो भक्ति योग के लिए हमें सबसे पहले जो है वो भगवत ज्ञान होना चाहिए। इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। तो यहां पे इस श्लोक में भगवान की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो आज जो बता रहे हैं भगवान की जो भिन्ना शक्ति है, भौतिक शक्ति है, भगवान की जो मुख्य शक्तियां हैं वो तीन है, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था, तीन शक्तियां हैं। तो आज जो वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में वो वर्णन कर रहे हैं बहिरंगा शक्ति का। तो बहिरंगा शक्ति इन्हीं चीजों से बनी है जो हमें नजर आती है, स्थूल
भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च। तो ये आप देखो तो सबसे जो स्थूल है उससे फिर सटल होती जा रही है। सबसे स्थूल है भूमि, है ना, भूमि को आप छू सकते हो, भूमि को आप सूंघ भी सकते हो, है ना, भूमि का आप टेस्ट भी ले सकते हो, सब तरह से सभी इंद्रियों से भूमि को आप जान सकते हो। भूमि आपो, आपो है फिर पानी, पानी जो है भूमि से ज्यादा सूक्ष्म है, उसको आप जो है उसमें सुगंध नहीं होती, पानी में कोई गंध नहीं होती। पानी में अगर गंध हो तो वो माना जाता है कि प्योर नहीं है, पानी में गंध नहीं होती, तो सूक्ष्म है वो। फिर भूमि, फिर अनल मतलब अग्नि, अग्नि जो है और सूक्ष्म हो गई, मीन्स उसमें अब क्या है, उसमें टेस्ट भी नहीं होता फिर अग्नि में। और फिर वायु, वायु और भी सटल हो गई। और आखिर में फिर खम, खम मतलब आकाश, आकाश स्पेस, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जा रही हैं। लेकिन जब ये प्रकट होती हैं तो सूक्ष्म से स्थूल प्रकट होती हैं। सबसे पहले जो है आकाश आता है, आकाश से वायु आती है, वायु से फिर अग्नि आती है, अग्नि से जल आता है, जल से पृथ्वी आती है, ठीक है। तो ये सब वर्णन दिया हुआ है भागवतम पुराण में। और प्रभुपाद जी यहां पे वर्णन कर रहे हैं एक श्लोक का, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हम तीन अगर पुरुष अवतारों को जान लेते हैं, तीन विष्णु हैं, विष्णु एक नहीं है। कई लोग जैसे कहते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु से आए हैं, भगवान विष्णु जो है वो है परम, कृष्ण उन्हीं से आए हैं, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि विष्णु तो एक नहीं है, विष्णु तो कई है। और यहां पे बताया है जो तीन है मुख्य विष्णु जो है वो है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। कोई बता सकता है कैसे कैसे इनमें अंतर है, कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके, किसको पता है इसके बारे में? अभी हमने पढ़ा, जिसने ध्यान से सुना वो बता सकता है, इसी में लिखा हुआ है। तो महाविष्णु जो है, जैसे यहां बताया है कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है, तो स्वांश बताया है। तो भगवान के कुछ तो है स्वांश है और कुछ है भिन्नांश, जैसे भिन्ना प्रकृति अष्टदा, जैसे ये भिन्ना प्रकृति है तो उनके अंश भी भिन्न है। जैसे जो हम जीव है, जीवात्मा जो है वो उनका भिन्न अंश है, हम भिन्नांश है। और ये सारे जो विष्णु तत्व है, जो विष्णु अवतार है, वो उनके स्वांश हैं, उनके अंश हैं, लेकिन उन्हीं जैसे हैं, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम भी उनके अंश हैं, जीव भी उनका अंश है भगवान का, लेकिन वो भिन्न हो गया है, अलग हो गया वो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर इसको कोई रिकॉर्ड कर ले आवाज को, और फिर रिकॉर्ड करके फिर उसको प्ले करे कहीं पे, तो ये कहेंगे कि हाँ एक कृष्ण प्रिय दास बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन वो जो टेप रिकॉर्डर या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेरी आवाज आ रही है वो मैं नहीं हूं, समझिए आप, मैं बोल रहा हूं लेकिन वो मैं नहीं हूं। इसी तरह से भगवान के हम अंश होते हुए भी हम भगवान नहीं हैं, हम भिन्न हो गए हैं। लेकिन जो विष्णु तत्व तो है वो भगवान के स्वांश हैं, वो भगवान के अंश होते हुए भी भगवान जैसे ही हैं वो भी। जैसे ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया है कैंडल का, जैसे एक कैंडल से अगर आप दूसरी कैंडल जलाते हो तो उन दोनों की रोशनी में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन पहली कैंडल को हम ओरिजिनल कैंडल कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। गोविंद जो है वो आदि पुरुष है, उनसे सारे विस्तार हुए हैं। तो यहां पे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले है महाविष्णु, पहले कौन से हैं महाविष्णु, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। तो महाविष्णु से क्या है, महाविष्णु से सारी जो भौतिक प्रकृति आई है सब महतत्व जिनसे बनेगा भूमि अपो नलवायु जो सब कुछ इससे आएगा महातत्व से, ठीक है ना। सारी जो भौतिक सृष्टि है वो महाविष्णु से आती है, महाविष्णु। फिर महाविष्णु जी सारी जो सृष्टि बन जाती है, सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो हर एक ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु जो है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो उसमें घुस जाते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए, और गर्भोदक्षाय विष्णु के फिर जो और आगे विस्तार हैं वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा, वो फिर कण कण में घुस जाते हैं, कण कण में, हर एक एटम में, हर एक जीव में। हरे कृष्णा, आपको समझ आ रही है, इनको नींद आ रही है। हरे कृष्णा, नींद आ रही है आपको, नहीं समझ आ रहा आप तो बोल रहे, ये समझना चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो भौतिकवादी व्यक्ति हमें बुद्धू बना रहे हैं, भौतिकवादी व्यक्ति हमें समझा रहे हैं, हमें जो स्कूलों में पढ़ाते हैं कि जो आत्मा है वो आई है भौतिक तत्वों से, जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो भौतिक तत्वों से हुई है, ये तो पढ़ाते हैं केमिकल एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी क्या बताती है ना। वो ये नहीं बताते कि आत्मा के बारे में तो उनको ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं कि केमिकल्स से, केमिकल्स का कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया कि फिर क्या हुआ कि वो उसमें लक्षण आ गए, लाइफ के लक्षण आ गए, जीवन के लक्षण आ गए उसमें, ऐसे तो पढ़ाते हैं, ठीक बात है, ऐसे पढ़ाया जाता है ना। आत्मा के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? आप सुनो सुनो, टीवी ज्यादा मत देखा करो, शास्त्रों को पढ़ा करो। अब ये तो हमारी कमी है, हम भगवद गीता के बारे में हमें हमने पूछा भी, सुनाया हमने, तभी भी किसी को नहीं पता कि कौन कौन से तीन विष्णु है, किसी ने नहीं बताया। टीवी की तरह ध्यान रहता है हमारा, टीवी में ये बताया, अखबार में ये बताया, है ना, इसीलिए तो हमारा ये हाल है। फिर इन्हीं ने तो काबू किया हुआ हमें, टीवी ने, अखबार ने, मैगजीन्स ने, वो बुद्धू बनाया हुआ हमें, बुद्धू बनाया हुआ हमें, असली जो ज्ञान है उससे हमें वंचित किया हुआ है, तभी तो इतने हाहाकार मचा हुआ है। देखो कितने लोग इतना कुछ होने के बाद दुखी के दुखी है, नहीं है, सब कुछ होने के बाद, सब सुविधाएं होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, फिर आत्महत्या कर लेते हैं, बताओ। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पीछे लोग ऑटोग्राफ के लिए भागते हैं, और जहां जाते हैं इतनी सारी लाइटें, ये वो सब कुछ, कैमरे भाग रहे हैं, इतने सारे मीडिया भाग रहे हैं उनके पीछे, और वो क्या करते हैं, 37वीं मंजिल से छलांग लगा देते हैं, सब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, छलांग लगा देते हैं। एक व्यक्ति हुआ है डेल कार्ने ने किताब लिखी, क्या याद है किसी को, है, वेरी गुड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और एक किताब उसने और लिखी, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो जीना सीखो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनो। उसने बहुत सारी बातें लिखी, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, और उसमें ये भी कहा कि देखो मेरी किताब पढ़ के एक जो लड़की है वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन उसने अपना विचार त्याग दिया, देखो इतनी अच्छी किताब है। और खुद न्यूयॉर्क में 30वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली उसने, खुद डेल कार्ने ने, जो लिख रहा है स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, भगवद गीता नहीं पढ़ी उसने, असली ज्ञान नहीं लिया उसने। तो इसीलिए टेलीविजन को छोड़ दो, देखना टेलीविजन में क्या रखा हुआ है। अमेरिका ने ये रिसर्च किया है कि जो व्यक्ति आधा घंटा टेलीविजन देखता है, सिर्फ आधा घंटा, वो कभी भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। कितने डेंजरस है ये। और अगर मन को वश में नहीं करेंगे तो योग क्या साधेंगे, क्या करेंगे हम, शांति कहां से मिलेगी मन ये अगर भाग रहा है तो। तो इसलिए ये बात को सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है कि जो लाइफ है वो आई है केमिकल से, ये गलत है। बल्कि केमिकल्स आए हैं लाइफ से। लाइफ इज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल्स बट लाइफ प्रोड्यूस केमिकल्स। कैसे, कौन उदाहरण देगा? देखो ये बात तो सच है, अगर किसी भी साइंटिस्ट को कहो ये सारे केमिकल्स ले लो अब हमें कोई जीवन बना दो, कोई जीवित व्यक्ति बना दो, बनाएगा कोई? कोई नहीं बना सकता। लेकिन ये आपके पास जरूर उदाहरण है कि लाइफ से केमिकल्स आते हैं। आप बताओ क्या उदाहरण है? देखो नींबू, नींबू का जो पेड़ होता है कितने नींबू लगते हैं उसमें, और वो नींबू को आप निचोड़ के कितना सारा आप विटामिन सी ले सकते हो, एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो, कितना सारा एस्कॉर्बिक एसिड ले सकते हो आप, कितना केमिकल ले सकते हो एक ही पेड़ से, जीवी लिविंग एंटिटी है ना वो। और हम लोग भी मनुष्य, गाय, जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रेस्पायर करते हैं, पसीना आता है। अब पसीने को आप अगर निकालो तो इसमें सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड केमिकल होता है ना। तो ये तो हमें साफ नजर आता है, कितने उदाहरण है कि जो लाइफ है उससे केमिकल्स आते हैं, लेकिन केमिकल से लाइफ आती है ये तो कहीं हमें नजर नहीं आता, लेकिन पढ़ाया जाता है हमें और हम भी पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास असली ज्ञान नहीं है। तो यही यहां बात बताई जा रही है कि ये जो है सारे के सारे जो तत्व हैं ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है। ये आगे भगवान बताएंगे कि मेरी और दूसरी परा प्रकृति भी है, ये अपरा प्रकृति है और भगवान आगे बताएंगे मेरी परा प्रकृति भी है। और ये जो भिन्ना प्रकृति है जैसे आगे बताया है ये 24 तत्वों की बनी है। भिन्ना प्रकृति में 24 तत्व हैं। कौन कौन से हैं 24 तत्व, यह बताया ना। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। नास्तिक लोग इसके आसपास घूमते रहते हैं, ये जो भौतिक शक्तियां हैं इसी के आसपास घूमते हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो मानते नहीं हैं आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानते वो, लेकिन वो मानते हैं कि हां मैटर एग्जिस्ट, वो ये मानते हैं कि भौतिक शक्तियां जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और भौतिक शक्तियों को वो मैनिपुलेट करते रहते हैं, और इसी के कारण बहुत सारी चीजें हमें दे दी उन्होंने, नहीं कंप्यूटर दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, कितनी सारी चीजें, अभी एसी चल रहा है ना, ठंड गर्मी है बाहर लेकिन हम मजे से ठंड में बैठे हुए हैं, तो इतनी सारी चीजें दे दी। इसीलिए वो जो भी बोलते हैं ना हम उनको मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार, ठीक है हमें एसी तो इन्होंने दिया है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक कह रहे हो। और चाहे वो बोगस चीजें भी होती हैं, चाहे जैसे जैसे ये बोगस ही तो है, कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ये बोगस है। कहीं हमें उदाहरण नजर आता है, कहीं आप देखते हो कि मैटर से लाइफ आती है तो मान लेते हैं, या वो कहते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है ये बिग बैंग से हुई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये सृष्टि बन गई। बताओ ये कोई मानने वाली बात है? ये ऐसी है, कोई कहे जी एक प्रिंटिंग प्रेस में सारे वर्ड्स रखे हुए थे और वहां पे हमने धमाका किया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छप के तैयार हो गया, आगे कभी हो सकता है ऐसे? लेकिन उनकी बात को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी चीजें दे दी हमें। लेकिन वो भी इस कारण से है कि वो इनडायरेक्टली भगवान की सत्ता को मान रहे हैं, जब वो ये मान रहे हैं कि मैटर एग्जिस्ट, भौतिक जो शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है, भिन्ना शक्ति है, उसको वो मान रहे हैं। और आप सोचो अगर ये भी माने कि सोल एग्जिस्ट, आत्मा का भी अस्तित्व है, मैटर का एग्जिस्टेंस है, भौतिकता का, भौतिक प्रकृति का एग्जिस्टेंस है, तो सोल आत्मा का भी अस्तित्व है। ये अगर वो माने, और ये माने कि सुपर सोल परमात्मा का भी एग्जिस्टेंस है, तो आप सोचो कितनी अच्छी साइंस होगी, कितनी बढ़िया साइंस होगी। फिर वैसी साइंस होगी जैसे भागवतम में वर्णन आता है, कर्दम मुनि, कर्दम मुनि ऐसे विमान पे चढ़ के अपनी पत्नी को घुमा रहे हैं जो एक शहर जैसा है, जिस विमान में झरने हैं, है, नदियां हैं, पार्क है, विमान में है। वो विमान किससे चल रहा है? मंत्रों की शक्ति से चल रहा है, उसमें कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो कहां कहां चला जाता है वो। अभी जब हम ये बातें पढ़ते हैं तो हमें कहानियां लगती हैं, माइथोलॉजी है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा ये भारत जो है ये तो बहुत महान देश है, इसके जो लोग हैं ये तो बहुत कल्चर्ड है, इन पे हम राज कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले इनके कल्चर को खराब करो, कल्चर को इनको बताओ कि तुम्हारा कल्चर क्या है, माइथोलॉजी है, ये झूठा है, सब कहानियां है, ये कोई सच्ची बातें नहीं है। उन्होंने आए, मैक्स मुलर ऐसे लोग आए, उन्होंने क्या किया, संस्कृत पढ़ी, और संस्कृत पढ़ के कहा देखो इसका ये मतलब निकलता है, ये कोई मतलब है। और फिर उसके बाद जो है अंग्रेजों ने तो जितना कल्चर खराब किया, उसके बाद ये टेलीविजन आ गया जिसकी अभी ये दुहाई दे रहे थे। टेलीविजन, जितना टेलीविजन ने हमारा नुकसान किया है हमारे कल्चर का, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया, मुसलमानों ने भी किया 400 सालों में, जितना टेलीविजन ने 40-50 साल में करके रख दिया है, बुरा हाल कर दिया है बिल्कुल। बच्चों को पूछो कुछ उनको अक्ल ही नहीं है, कुछ उनको पता ही नहीं है। कल मैं एक जगह गया था, वहां बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, बात कर रहे थे, पता नहीं कहां किस दुनिया में रह रहे हैं, उनसे उनको कुछ पता नहीं है हमारे कल्चर के बारे में, भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं है। और उनको शर्म भी नहीं आती, क्या हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कोई कहने वाला ही नहीं उनको है। और एक हमारे माता जी उनके पास गए, वो बड़ी खुश होकर कहती है, मुझे फोन किया, प्रभु जी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत खुश हूं आज, मेरा बेटा, उनका पोता मतलब, मेरा पोता आया मेरे पास तो कहता है मेरा नाम जो है ना हरी माधव रख दो, हरी माधव। मैंने कहा हरी माधव, उसको कहां से पता लग गया हरी माधव, हरी माधव। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। तो जब मैं उसके घर गया, प्रभु जी वो मैं गलत ही कह रही थी, ये हरी माधव नहीं, ये पता नहीं हैरी पॉटर कुछ बोल रहा था, हैरी पॉटर। मैंने कहा देखा आजकल का बच्चा हरी माधव कहां से सुनेगा, ये हैरी पॉटर ही सुने। वो कह रहे मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो आप समझे, ये हाल हो रहा है हमारा, बहुत बुरा हाल है। प्लीज मैं आप सब लोग, आप तो सब लोग जो हो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हो और आप जुड़े हुए हो इस कौन से, तो प्लीज आप इस चीज को अच्छी तरह से समझो कि ये भगवान की जो ये भिन्ना शक्ति है, जो ये जो है ये भगवान से ही प्रकट हुई है, लेकिन हमें गुमराह कर रही है, हमें माया में डालने के लिए है, ये हमें इल्यूजन में डालने के लिए है, ये भिन्ना शक्ति जो है। इसीलिए आगे जब आप पढ़ोगे भगवद ज्ञान जो है, बहुत सुंदर चैप्टर है, इसीलिए इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन ये मेरी शक्ति तो है लेकिन मेरी पराशक्ति भी है, तो हम चाहें तो हम पराशक्ति की शरण ले सकते हैं। अभी क्या है, हमें सिखाया जाता है कि अपराशक्ति की शरण लो। अच्छा कमजोरी आ रही है, विटामिन खा लो, विटामिन खा लो, टॉनिक ले लो। कोई ये नहीं बताता भैया एकादशी का फास्ट रखो, देखो कितनी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में 12 बजे तक फास्टिंग रखो बिना पानी के, देखो कितनी शक्ति मिल जाएगी। वो बताते नहीं है, उन्हें कमजोरी बहुत कमजोरी है, तू ना रख बड़ा कमजोर हो जाएगा, उल्टा करेंगे बल्कि। जन्माष्टमी में मान लो किसी को इंतजार में आया, भक्तों के संग में आया, उसने सोचा कि आज बहुत मन नहीं रखनी, तू आज ना नहीं जल्दी नहीं कर दे, तो डिस्करेज करेंगे उसको, विश्वास ही नहीं है ना। परा प्रकृति पे विश्वास नहीं है, अपरा पे बहुत विश्वास है। अभी देखो, अपने एसी चल रहा है, हम बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन थोड़े से लोग ही तो बैठे हुए हैं, थोड़े से लोग ही तो बैठे हुए हैं। और भगवान ने देखो दो तीन दिन पहले बरसात करके कितना बढ़िया मौसम कर दिया है, सारी दुनिया कहां मर्जी घूमो, थोड़ा आपको चारों तरफ से कवर करके बैठना पड़ेगा। गंदी हवा, एसी की हवा तो ले रहे हैं, लेकिन गंदी हवा तो ले रहे हैं, ताजी हवा थोड़ा मिल रही है आपको। अब सोचते बोला जी एसी लग गया जी, थोड़े घर इतने एसी लगा हुआ है, और गंदी हवा खाते हो आप, जो बाहर निकालते हो हवा वही अंदर ले जाते हो, फिर इसमें क्या आपने उन्नति कर ली। तो आप समझो, ये जो हम भगवान की जो शक्तियां हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम मैनिपुलेट करेंगे उसी में फंस जाएंगे, हम उसी में फंस जाएंगे, यही सोच रहे हैं लोग। और यही प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान जो है इनसे परे हैं, ये लोग जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो जैसा कि भगवदगीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति से लगे हुए हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है, और भगवान उनसे परे हैं, उनकी शक्तियां हैं, ये इनके बारे में इनको पता ही नहीं है। अगर हम उनको जान लेते हैं तो वी बिकम बेटर साइंटिस्ट। जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है वो बेटर साइंटिस्ट है, वो बुद्धू नहीं है। लोगों को लगता है ऐसे बुद्धू है, ये उनका बहुत बड़ा धोखा है। जय जन कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, उसको नहीं आप धोखा दे सकते हो, तो कईयों को धोखा देके आ जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी 70 साल के बूढ़े व्यक्ति खाली जेब अमेरिका गए, पता है आपको, जानते हो आप, ये सामने खड़े हैं जो फोटो के रूप में, ये व्यक्ति 70 साल की उम्र में 40 रुपए जो मिलते थे उस दिनों में, 40 रुपए जेब में डाले, एक ट्रंक लिया भागवतम पुराण की किताबों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बाद, और बुरा शरीर लेके, कोई इंग्लिश जानते नहीं है, कोई व्यक्ति इनको जानता ही नहीं है अमेरिका में, और किसी से कॉम्प्लीमेंट्री एक टिकट लेके मालवाहक समुद्री जहाज पे चढ़ के पहुंच गए बोस्टन में, अमेरिका पहुंच गए, और 10 सालों में सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, सारी दुनिया में, वहां अमेरिका गए और अमेरिका में उन्हीं लोगों को भक्त बना दिया, उन्हीं लोगों के द्वारा प्रचार किया। ये है क्यों, क्योंकि उन्होंने शरण ली भगवान की पराशक्ति की, पराशक्ति की जो है शरण ली इन्होंने। तो कितने बड़े ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, तो इसीलिए हमें भी जो है इसकी शरण लेनी है, घबराना नहीं होती। अगर हमें न्यूज का पता नहीं लगेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, आप समझो, जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे तभी भी तो न्यूज ट्रैवल करती थी ना। अभी मैं अपना अनुभव बता सकता हूं, मुझे कितने 25 साल हो गए मैंने न्यूज़पेपर देखा ही नहीं होगा, तो देखा होगा मतलब कभी उसके इंटरेस्ट नहीं, देखते तो हैं, मंदिर में भी आता है न्यूज़पेपर, लेकिन सारी खबरें पता लग जाती है। मेटीरियल नॉलेज क्या है, मेटीरियल नॉलेज के लिए तो सारी दुनिया इसी के पीछे तो भाग रही है, पता लगेगी आपको, इसकी चिंता करनी है कि भगवत गीता में हमें क्या दिया हुआ है उसकी हम चिंता करें। तो यहां पे यही जो भगवान है अभी यही अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, और यहां पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, अगर आपने ध्यान से सुनी हो मैं दोबारा पढ़ता हूं। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है, क्षणिक थोड़ा, इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु द्वारा निर्देशित है, ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोगता है, तो ये मान लेता है। जो भगवान कृष्ण को नहीं जानता वो सोचता है कि हम ही नियंता है, हम नियामक है, जैसे मैंने आपको बताया हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बहुत सुंदर सुखी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हम सुखी बना सकते हैं, हम देखो हमने एसी का आविष्कार कर लिया, लेकिन उनको पता नहीं एसी के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं, क्यों, क्योंकि आप गंदी हवा बार बार, जो बाहर हवा निकलनी चाहिए जो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है गंद, उसको ही अगर आप दोबारा शरीर के अंदर लोगे तो क्या हाल होगा, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। और लोग जो है ऐसे नुक्कड़ में अपना ऑफिस खोल लेते हैं, घर बना लेते हैं जहां पे हवा की कोई बूंद नहीं आती, और जी स्प्लिट एसी लगा लिया जी, प्रॉब्लम है कोई है नहीं, स्प्लिट एसी लगा हुआ। आजकल तो स्प्लिट एसी हो गया ना, पहले तो एसी भी हर जगह नहीं लग सकता था, अब तो स्प्लिट एसी है, कहीं पे उसका वो रखो तार ले जाओ, कहीं पे भी वो कहीं पे भी रख दो जाके, उस ठंडी हवा पहुंच जाएगी अंदर। लेकिन सारे दरवाजे सारे खिड़कियां बंद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप बाहर की हवा नहीं ले सकते, ताजी हवा नहीं ले सकते। भी आविष्कार ले लो, अभी कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है, बहुत कंप्यूटर, लैपटॉप, लैपटॉप होना चाहिए भैया लैपटॉप, और मेमोरी 0/0 हो गई है, मेमोरी काम ही नहीं करती। अभी थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर बच्चों को देखो कैलकुलेटर निकालते हैं, या अभी कैलकुलेटर तो अब्बाकस पढ़ो भी, अब्बाकस तो ये क्या कहते हैं हमारे जमाने में तो होता नहीं, अब्बाकस पढ़ते हैं जी, अब्बाकस जरूर पढ़ना चाहिए जी। मैथमेटिक्स में एक नया चला अब्बाकस, वो जी अब्बाकस से जी बड़ा अच्छा हो जाता है, दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है, सारे बच्चे अब्बाकस पढ़ रहे हैं जी। हमारे तो जब हम छोटे थे तो हमें तो टेबल्स पढ़ाते थे, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, उससे सारी कैलकुलेशन होती थी। और हमारे से जो और भी बुजुर्ग हैं वो तो और भी टेबल्स पढ़ते थे, 2.5 का टेबल है, 1.4 का टेबल, 1/4 का टेबल, ऐसे पढ़ते थे, उससे सारी कैलकुलेशन होती थी। तो इन बातों को हमें समझना है कि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि इस भौतिक संसार के परे आत्मा है, परमात्मा है, तो परमात्मा कण कण में विराजमान है, परमात्मा कण कण में है, जैसे यहां बताया जा रहा है क्षीर दक्षाय विष्णु के रूप में, तभी वो उनमें मूवमेंट है ना। अगर आप देखो तो एटम में देखो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं प्रोटॉन के आसपास, पढ़ते हैं ना, जो साइंस पढ़ते हैं उनको बताओ, तो कौन घुमा रहा है उनको, वो परमात्मा है उसके बीच में बैठा हुआ जो उनको घुमाता है। तो ये बातें हैं यहां पे, और आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो और बातें पता लगेंगी, अपरा पराशक्ति है ना, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भगवान की पराशक्ति की शरण लेते हैं, है ना। और प्रोबा जो हमें ये बता रहे हैं, ये पराशक्ति है, भगवान के नामों का जप करना, इसकी हमें, ये भी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसकी शरण में जाना चाहिए हमें, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय है, आप कुछ प्रश्न पूछिए ताकि पता लगे आपको। हाँ वेरी गुड, सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि रोग क्या है ना, रोग का भी पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आप केमिस्ट की दुकान पे जाओ और बोलो जी हमें कोई रोग हो गया है, आपके पास तो दवाइयां हैं, दवाइयों का काम है रोग को दूर करना, कोई बढ़िया सी दवाई दे दो, काम चलेगा? वो कहेगा भैया रोग तो बताओ, रोग कौन सा है, किसकी दवाई दूं भैया, कब्ज की दवाई दूं या 10 आने की दवाई दूं, क्या दवाई दूं, रोग तो बताओ। तो इसी तरह से सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रोग क्या है, रोग का नाम क्या है, तो दवाई बताएंगे हम आपको। आपको पता है क्या रोग लगा हुआ है, हम सबको पता है क्या नाम है उसका, भव रोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हम सबको भव रोग लगा हुआ है, सबको भव रोग लगा हुआ है, उसकी दवाई ढूंढनी है हमें। बाकी जो रोग है वो तो छोटे मोटे हैं, वो चिंता का विषय नहीं है। जैसे मान लो किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, अब पीलिया हो गया तो जी उसको भूख नहीं लगती, अब भूख नहीं लगती वो तो जॉन्डिस के कारण है, वो अपने आप में रोग नहीं है, जॉन्डिस ठीक होगा भूख लगनी भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से भाव रोग जो है वो कारण है सारे रोगों का, तो इसलिए भाव रोग को दूर करने का एक ही औषधि है, वो बताया हरेरे नाम एव केवलम कलयो नास्तेव गतिरन्यथा, एक ही औषधि है इसकी, भगवान के नामों की औषधि है ये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशिकम नाम नाम कलो कलमश नाशनम न परोतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों के नाम है यही है कलयुग की कलमश का नाश करने का उपाय, और कोई उपाय नहीं है, सारे वेदों में हमने जांच कर ली है, ठीक है, क्योंकि हम आत्मा है, ये शरीर जो है ये तो कपड़ों के समान है। कपड़े के लिए थोड़ा हम चिंता करते हैं, बचपन से अब तक कितने कपड़े बदल चुके हो आप, कितने कपड़े बदल चुके हो, याद है? याद भी नहीं होगा, अनगिनत। इसी तरह से हमारी आत्मा अनगिनत शरीर बदल चुकी है, इसको याद भी नहीं है कितने शरीर बदल, लेकिन हम इसी शरीर को लेकर बैठे हुए हैं, यही शरीर परमानेंटली जैसे हम रख लेंगे, मूर्खता है ना। ये आत्मा है जो असली चीज है, उसके बारे में हम सोचें। अभी जैसे आज कई लोगों को हमने बोला आप आना, आज मंडे क्लास है आप आना, आते हैं वो नहीं जी, किसी का बर्थडे है जी, बर्थडे में जा रहा है, ये मूर्खता है। इसका मतलब क्या, कृष्णा कॉन्शियसनेस समझ में नहीं आई, वो शादी है जी, शादी पे जाना है, क्या कर लोगे शादी पे जाके, आत्मा जाए भाड़ में, उसका लेना देना नहीं आपको। और भगवान भी ऐसे टेस्ट डालते हैं, पता है आपको, जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो, जैसे कोई भी, जैसे क्लास है आपकी, पहली क्लास में आपके आते रहे साल हो गया, तो पहली क्लास से दूसरी क्लास में चलाने के लिए आपके बीच में टेस्ट डालेंगे ना, तभी तो चलाएंगे, क्या नहीं, टेस्ट नहीं होता ऐसे चला देते आजकल, टेस्ट होता है ना। इसी तरह से जब आप भक्ति करते हो, आपने की आप आ रहे हो एक सोमवार, दो सोमवार, तीन सोमवार, चार सोमवार लगातार आ रहे हो, वो भगवान कहते हो उसको दूसरी क्लास में चलाना चाहिए यार, वो ठीक पढ़ाई कर रहा है, और भगवान टेस्ट डाल देते हैं, आप भाग लेते हो वहां से, तो दूसरी क्लास में कहा चल जाओगे, जब एग्जाम्स आएंगे तो बच्चे भाग जाएंगे, तो दूसरी क्लास में चढ़ाएंगे उसको, आप मौका खो देते हो। भगवान ने तो टेस्ट डाला था कि अब उसको दूसरी क्लास में चढ़ा देता हूं, आगे प्रोग्रेस कर देता हूं, आप फेल हो गए, ये फेल नहीं होना, हमें समझना है कि ये आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा जरूरी है, शरीर का क्या है, शरीर तो बचा लोगे, कितना बचा लोगे, जाना ही जाना है, किसी का रुकेगा आज तक शरीर, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का प्रश्न, आत्मा आठ, हाँ आत्मा तो परे है ना इनसे, आत्मा इनसे परे है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर जो स्थूल है और सूक्ष्म, जैसे बताया ना, शरीर जो हमें नजर आ रहा है वो तो पांच तत्वों का बना है, ठीक है, और एक वो शरीर है जो नजर नहीं आता, जैसे हम शरीर पे भी तो दो गारमेंट्स डालते हैं ना, एक गारमेंट्स तो नजर आते हैं सबको है? और एक ऐसे अंदर गारमेंट्स डालते हैं हम, नजर नहीं आते, लेकिन आजकल तो इतना गंदा रिवाज आ रहा है, वो भी लोग दिखाते हैं, ये हमने देखो अंडर गारमेंट देख लो कितने अच्छे डाले हुए हमने, पागल मूर्ख हो गए लोग आजकल, लेकिन वो नजर नहीं आने वाले होते हैं वो। इसी तरह से हमारा एक शरीर है, स्थूल शरीर जो नजर आता है आपको, एक इसके अंदर शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो नजर नहीं आता, वो बना हुआ है, यहां बताया है, मन बुद्धि और अहंकार से, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार। तो आत्मा जो है इनसे परे है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम इस कमरे के पार्ट थोड़ा हो गए हैं, इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, तो हम ये थोड़ा कि अब कुर्सी के साथ हम चिपक गए, कुर्सी बन गए हम, कोई जब हमारा मन करेगा बाहर निकल जाएंगे हम, अलग है ना हम इनसे, हमारा तत्व अलग है। इसी तरह से आत्मा इस शरीर में है, लेकिन शरीर का पार्ट नहीं है वो, शरीर से अलग है वो, अलग तत्व है वो। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं, और जी आप कहते हो जी आत्मा हार्ट में रहती है, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो फिर क्या होता है, जैसे जी अब तो फंसा लिया हमने, देखो जी इनको पता ही नहीं है है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ये तो, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो आत्मा कैसे, उसकी आत्मा उसमें चली जाएगी, कैसे हो गया अभी ये? तो ये हमें समझना है, आत्मा हार्ट वाली जगह पे रहती है, हार्ट के अंदर घुसी हुई नहीं है कि हार्ट चलाएगा तो वो भी चली जाएगी। जैसे अगर मान लो आप किसी घर में रह रहे हो और आपको रेनोवेट करना है, घर तोड़ दिया आपने, तो घर टूटा तो आप भी उसी में टूट गए क्या, बाहर आ जाओगे, खड़े हो जाओगे बाहर में, हाथ जलो इसको कंसल्ट करेंगे फिर जाएंगे इसमें घुसेंगे, या किसी और दूसरी जगह पे शरण ले लोगे। इसी तरह से आत्मा अलग तत्व है, ये समझना चाहिए। इसीलिए तो सारे दूसरे अध्याय में ये तो बताया है, आत्मा का विश्लेषण किया ना, नैनम छिंदंति सहस्राणी नैनम बहति पावका न चैनम करंती आपो न शोषति मारुतम। ठीक है, तो आत्मा इनसे अलग है, ये शरीर अलग है। आत्मा जब जाती है तो जैसे बताया है देव नेत्रेन, भागवतम में बताया है कि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, और ऊपर से भगवान के निर्देशन में वैसा ही शरीर दे दिया जाता है ना। अगर मान लो हम मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन हमारे कार्य ऐसे हैं जो कुत्ते जैसे हैं। बताया एक ज्योतिषी ने बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो बताया जी स्वीडन में एक कुतिया ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चे में ये वाली आत्मा ट्रांसफर हुई है। यहां के प्रधानमंत्री थे वो, और लेकिन दूसरे जन्म उनको, क्योंकि कार्य कुत्तों जैसे करते थे वो, प्राइवेट लाइफ थी उनकी अपनी, जैसे कुत्ता कार्य करता है वैसे वो करते थे, तो उनके इंप्रेशन पड़ गए माइंड के ऊपर, और माइंड जो है वहीं पे ले गया उनको, अभी कुत्ता बनो आराम से भोगो, क्योंकि मनुष्य के शरीर में तो आप कुत्ते के भोग अच्छी तरह भोग नहीं सकते, बीमारियां हो जाती हैं, है ना। नहीं नहीं, भगवान आप समझो, भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, परम दयालु है। हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमें शरीर देते हैं। मान लो किसी को खाने का बहुत शौक है, अब मनुष्य शरीर में खाएगा तो मोटापे की बीमारी हो जाती है उसको, मोटा 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 होता चला जाता है, बता ना, मोटापे की बीमारी बहुत गंदी है, और फिर उसको पेट भी कटवाना पड़ता है, पेट काटो ये चर्बी निकालो इसकी, ये करो वो, तरह तरह की, मोटा होता है खाने का, लेकिन वो शौक खाने का उससे छूटते नहीं, जब देखो खा रहा है, कभी कुछ खा, हाथी बन जाओ या तुम कभी मोटा नहीं होगा, खाते रहना, कृपा की भगवान ने हाथी बना दिया, ले खाता रहे, अब खाता रहे खाता रहे, कुछ नहीं होगा तुझे, कभी मोटापे की बीमारी नहीं होगी तुझे, कितना टनों टन खा ले तुम, भोग योनि है ऐसा ही, मनुष्य ने के योनि के अलावा सब योनियां भोग योनि है, एक मनुष्य की योनि है जो भोग योनि नहीं है, तपस्या की योनि है जिसमें हमें आत्म साक्षात्कार करना है। तो हम बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं अगर हम जो ये मनुष्य की योनि में अगर हम भोगों के प्रति आकर्षित हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि भोग भोग नहीं पाएंगे, शरीर दिया ही नहीं भगवान ने उसके लिए, ना माया मिली ना राम, सुनिए हमें कहानी, ना माया मिली ना राम। एक ब्राह्मण था बेचारा, बहुत भूखा था, बहुत भूखा था, अब क्या करे, मुसलमान का एक घर मिल गया, और मुसलमान के घर में उसने भोजन कर लिया, वो भोजन था सड़ा हुआ, बिल्कुल सड़ा हुआ बासा, अब ना तो उसको पेट भरा उसका, ना उसकी भूख मिटी, और उधर से धर्म भी गया, ना माया मिली ना राम। तो इसी तरह से अगर हम इस शरीर में आके भी भोगों के प्रति आकर्षित रहेंगे तो हमने अपना पूरे का पूरा जो है अपना जीवन बेकार कर लिया, क्योंकि भोग तो भोग नहीं पाएंगे, मनुष्य जीवन है ही नहीं भोगों के लिए, बीमारियां लगेंगी, कुछ ना कुछ मुसीबतें आएंगी, और उधर से जो हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं वो भी जाएगा। तो इसीलिए भगवद गीता को पढ़ो, टेलीविजन देखना छोड़ो ना, टेलीविजन ये वो क्या है उसमें, भगवद गीता को ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, और अगर आप भगवद गीता ध्यान से पढ़ोगे तो पहला पहला मातम्य है कि आप शोक इन सब चीजों से, भय शोक इन सब से विरक्त हो जाओगे। आप देखो सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान, यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। कौन नहीं चाहता दुखों और चिंताओं से मुक्त होना, लेकिन हम तो सोचते हैं कि टेलीविजन देख के हम दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, गलत है ये, इसको पढ़ने के बाद मुक्त होंगे। भय शोक आदि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, तो बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद।